हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम महिमा पार्ट 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम प्रस्तावना पढ़ेंगे और इसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद्भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म ज्ञान आदि सहित भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रायण करने के बाद उसके पश्चात ही हुआ, यानी जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से प्रयाण कर गए थे, चले गए थे अपने गोलोक वृंदावन धाम में, तब श्रीमद् भागवतम के रूप में संसार में वे प्रकट हुए। जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खोली है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। या ऐसा सूर्य है क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि जीव यहाँ इस कलयुग में अपने अस्तित्व को खो देता है, अपने आध्यात्म, अपना आत्म साक्षात्कार खो देता है, अपना रियल उसका संबंध किसके साथ है, उसका रियल स्वरूप क्या है, वो सब भूल जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब इस कलयुग के लोग जो होते हैं, जब वो जहालत के घन अंधकार में गिर जाते हैं, तो श्रीमद् भागवतम महापुराण सूर्य की तरह उनके अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान उनके हृदय में भर देता है और उन्हें पता चलता है कि हम कौन हैं। श्रीमद् भागवतम 1.3.43। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भारत के कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव समाज के समस्त क्षेत्रों के स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका संरक्षण श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भारत का कालातीत ज्ञान, यानी कि कालातीत मतलब काल की कोई सीमा नहीं है, ये स्टार्ट से है। आदि ज्ञान जो है वो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों यानी कि वेद जो है ना, उनमें पहले बताया गया था। ये जो ज्ञान जितना भी है वो सारा का सारा ज्ञान किसमें बताया गया था, वेदों में, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों में स्पर्श करने वाले थे। और जितनी भी मानव समाज के जितने पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो किसमें बताया, वेदों में बताया गया। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा हुआ, यानी कि स्टार्ट में क्या होता था, लिखा हुआ नहीं होता था, सिर्फ गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था। इस तरह से ये ज्ञान एक दूसरे को ना दिया जाता था, गुरु शिष्य परंपरा में ऐसे होता था। क्योंकि गुरु पहले जमाने में ऐसा होता था कि लोगों की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती थी कि सुनकर सीख लेते थे, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता गया तो बुद्धि इतनी थोड़ी रह गई कि हम याद नहीं कर पाते थे। तो इसलिए आगे लिखा, किंतु 4-5 हजार वर्ष पूर्व भगवान के साहित्यक अवतार, भगवान के साहित्यक यानी शक्ति आवेश अवतार श्रील व्यास देव ने सर्वप्रथम वेदों को लिखित रूप में प्रदान किया। फिर वेद व्यास ने देखा, भगवान ने जब देखा कि लोग याद नहीं कर सक रहे हैं और भूल जाते हैं हर चीज, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी, स्मरण शक्ति इतनी सीमित हो गई है कि हम कुछ याद नहीं कर सकते। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी वो याद नहीं रहता, तो क्या वेद को याद रखेंगे। तो फिर वेद व्यास जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने शक्ति आवेश अवतार लिया और वेदों को लिपिबद्ध किया, वेदों को लिखा। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। पहले सारे वेद लिख लिए और उनका सारांश वेदांत सूत्र में के रूप में उन्होंने लिखा। श्रीमद् भागवतम पुराण स्वयं वेद व्यास द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य यानी टीका, और वेदांत सूत्र का निचोड़ किसमें डाला, श्रीमद् भागवतम में। जितना भी वेदांत सूत्र लिखे और उनका उनकी टीका श्रीमद् भागवतम के रूप में उन्होंने बताई। इसका प्रयाण उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के आदेश में किया था। परिपक्व अवस्था यानी कि देखो, पहले वेद व्यास जी ने सारे वेद लिखे, वेदांत सूत्र लिखा, सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, और जब मतलब अब पहले पहले देखो हम ऐसा होता है, वैसे तो वो भगवान के शक्ति आवेश अवतार थे, लेकिन यहाँ परिपक्व लिखा गया यानी कि जब उन्हें सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद, सारे कंठस्थ थे, उसके बाद उन्होंने अंतिम स्टेज में क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम। यानी कि अब जैसे हम, मैं दो कॉपियां लिखती हूँ या दो डायरियां मेरी होंगी और मैं बोलूंगी कि ये शुरू में मैंने लिखी थी, तब मुझे इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन ये एंड में अभी मैंने मेरा जितना मैंने सीख लिया अपने एज में वो सारा का सारा मैंने इसमें डाला, तो जो एंड वाली जो बुक होगी ना वो सब लोग उसको प्रीफर करेंगे कि भाई हाँ इसमें ज्यादा, क्योंकि ये आपने सब कुछ सीखने के बाद लिखी है तो ये ज्यादा पावर वाली होगी ना। तो इसी तरह से वेद व्यास जी ने सारे वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कुछ लिखने के बाद अंतिम में, और अपने गुरु महाराज के आदेश, यहाँ पर साफ लिखा है, अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन अनुसार किया था। वैदिक वांग्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का सर्वाधिक पूर्व एवं प्रमाणिक भाष्य है। ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको क्या कहा जाता है, वैदिक अदब के दरख्त का पका हुआ फल, परिपक्व फल। और ये श्रीमद् भागवतम वैदिक अदब का सबसे ज्यादा प्रमाणिक भाष्य है। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो तज्ज्य है, हर चीज प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है। वेद व्यास जी ने अपने परिपक्व अवस्था में इस श्रीमद् भागवतम को लिखा था। आगे श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम की परंपरा के किस तरह से ही हम तक पहुंचा उसके विषय में कुछ बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम की रचना करने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया, यानी कि उनको कंठस्थ कराया। जो भी श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखा था अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाया। तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर यानी दिल्ली के निकट में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवतम सुनाया। महाराज परीक्षित किसके पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। जब वो युद्ध भूमि में गया था उस समय उत्तरा उनकी पत्नी जो थी वो गर्भ से थी और उनकी कोख में परीक्षित महाराज थे। जब अश्वत्थामा ने उनको ब्रह्मास्त्र मारा था क्योंकि वो चाहते थे कि पांडवों के संपूर्ण कुल का नाश हो जाए, एक भी उनके, अब क्योंकि पांचों पांडव तो बच गए थे, लेकिन अश्वत्थामा को दुर्योधन ने कहा कि किसी तरह से मैं चाहता हूँ कि कोई तो मरे उनके खानदान में, सब वो सब जिंदा है, मेरे सारे भाई मर गए। तो फिर अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में पलते हुए अभिमन्यु की हत्या करने के लिए उस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की उत्तरा ने और कृष्ण ने गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की ब्रह्मास्त्र से। तो वही परीक्षित महाराज जब उन्हें एक बार शाप मिला कि आपकी मृत्यु 7 दिन के पश्चात हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा मेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है, मैं क्या करूं। जितने भी ऋषि, क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत बड़े एक छत्र राजा थे और राजा के ऊपर जब संकट आता है तो सारे ऋषि मुनि, क्योंकि वो इतने शुद्ध राजा थे, अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखते थे, तो जितने भी विद्वान ऋषि मुनि संत थे वो सारे के सारे गंगा तट पे जमा हो गए। और सबसे महाराजा परीक्षित ने पूछा कि अब मेरे जीवन में केवल 7 दिन रह गए हैं, मैं क्या करूं, कैसे अपने भगवान के साथ अपने प्रेम का निर्माण करूं। किसी ने कहा भगवान के नाम का जप करो, किसी ने कहा दान दो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने तब कहा तपस्या। लेकिन वास्तव में भक्तों, ये सारे जितने भी पुण्य कर्म हम करते हैं ये तभी सार्थक होते हैं जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। यदि प्रेम ही नहीं तो ज्ञान ध्यान तपस्या यज्ञ इत्यादि का कोई उद्देश्य नहीं है। यदि सबसे पहले तो हमें अपने भगवान के साथ अपना प्रेम निर्माण करना चाहिए। वहां पर ऋषि बैठे हुए थे और कह सकते थे कि छोड़ दो सब कुछ और बैठ के माला करना शुरू कर दो, बस 7 दिन तक माला करो, जप करो और भगवान के पास पहुंच जाओगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताया कि आपको भगवान के साथ अपने प्रेम का निर्माण करना है और प्रेम का निर्माण तभी कर सकते हो जब आप भगवान के विषय में सुनोगे। श्रवण से प्रेम उत्पन्न होता है, यदि भगवान की लीलाओं को श्रवण किया जाता है किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा तो हमारे हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम छलछला उठता है। श्रवण करना बहुत अत्यधिक आवश्यक और लाभप्रद है। आजकल लोग शास्त्र को ज्यादा अहमियत नहीं देते, कहते हैं कि बस शास्त्र का निचोड़ है कि बस हम जप करें बैठ के और कीर्तन करें बस और शास्त्र अध्ययन। यदि शास्त्र अध्ययन करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता तो क्यों महाराजा परीक्षित को इस अंतिम समय में शास्त्र सुनने का उपदेश दिया जाता। फिर यदि शास्त्र सुनना इतना ज्यादा अनिवार्य ना होता तो श्री प्रभुपाद जी इतने सारे टीकाएं एक एक श्लोक के ऊपर इतना बड़ा तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों के प्रति इतना, इतने सारे शास्त्र लिखना, श्रीमद् भागवत गीता के एक एक शब्द को इतना विस्तार से क्यों लिखते। जब भक्ति केवल संकीर्तन होती तो फिर शास्त्र तो कुछ नहीं, लेकिन संकीर्तन बाद में आता है, पहले श्रवणम कीर्तनम, पहले श्रवण करना होता है, क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। प्रेम तभी उत्पन्न होगा जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, और जो श्रवण करेगा वो भगवान के लिए समय निकालेगा, जो श्रवण करेगा वो भगवान के नाम के कीर्तन में हृदय लगाएगा। तो श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक है। भागवतम तो यहाँ तक कहता है, कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 8, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। यदि आप अपने धर्म का सुनिश्चित, बहुत ही स्वनिष्ठित तरीके से पालन करते हो, लेकिन फिर नोत्पादयेत् यदि रतिं, विश्वक्सेन कथासुयः, भगवान की कथा को श्रवण करने में यदि आप रति उत्पन्न नहीं करते हो, भगवान की कथा सुनने में आपका रुचि नहीं लगती है, भगवान की कथा को सुनने का दिल नहीं होता है, तो फिर श्रम एव हि केवलम, पूरे जीवन में तुमने सत्यानाश कर दिया, खाली तुमने श्रम किया, गधे की तरह कार्य किया, क्योंकि कथा में यदि रुचि नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ किया, जो भी आज तक यज्ञ ज्ञान ध्यान जो भी किया, यदि भगवान की कथा में आपको रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है तो सब बेकार है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट और महान राज ऋषि थे, उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवतम का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा शुकदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ शुकदेव गोस्वामी के इस गंभीर प्रश्न से हुआ है। अत्यंत ही सुंदर और गंभीर प्रश्न है ये। केवल शुकदेव गोस्वामी का प्रश्न नहीं है, मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने पूछा है। शुकदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं, ये परीक्षित महाराज जो है वो मानव कल्याण के लिए शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों और विशेष रूप से मरणासन मनुष्यों के लिए पूर्णता का मार्ग दिखाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाइए। भगवान श्री कृष्ण के बहन के बेटे थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। क्या वो कृष्ण को नहीं जानते होंगे? कृष्ण को क्यों नहीं जानते होंगे? क्योंकि इतना करीबी रिश्ता था उनका, लेकिन फिर भी वो मानव समाज मानव कल्याण के लिए पूछ रहे हैं कि और कह रहे हैं विशेष रूप से बताइए मरणासन मनुष्य, यानी जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई। देखा जाए तो परीक्षित महाराज की मृत्यु निश्चित थी कि उनकी मृत्यु 7 दिन के बाद होगी, लेकिन वो मरणासन नहीं है, क्योंकि पता है वो 7 दिन तक तो एटलीस्ट जीवित रहेंगे। वास्तव में भक्तों, मरणासन व्यक्ति तो हम है, हमें पता भी नहीं है कि कब मृत्यु आएगी, आज अभी इसी समय इसी क्षण या फिर कभी भी आ सकती है। तो वास्तव में श्रीमद् भागवत हमारे कल्याण के लिए पूछा गया है, इसीलिए साफ साफ लिखा विशेष रूप से मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखाने की याचना करता हूँ। बताइए कि श्रवण कीर्तन स्मरण आराधन का विषय क्या है। वो पूछ रहे हैं कि किसका स्मरण करें, किसके विषय में श्रवण करें और किसकी आराधना करें। ना सिर्फ इतना और आगे भी पूछा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही सारग्रहित प्रश्न है और हमारा जीवन टिका हुआ इस प्रश्न के उत्तर में कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और इसका इस प्रश्न के आंसर में श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिक्षा दी गई, यानी ये भागवतम महापुराण हमारे जीवन की गाइड है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को समर्पित करना है भगवान को, किस तरह से भगवान के विषय में श्रवण करना है, किस तरह से उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है और क्या नहीं करना है, सब कुछ श्रीमद् भागवतम में हमें बताया जाएगा। आगे महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक प्रश्नों का, जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। यानी कि इनके प्रश्नों के जो उत्तर जो सुखदेव गोस्वामी दे रहे थे तब तक सुनती रही जब तक कि 7 दिन कंप्लीट न हो गए। वहां पर कंटिन्यूस मंत्र मुग्ध, यानी कि ऐसा लग रहा था कि सबको किसी मंत्र में पाश में बांध दिया गया था। सब 7 दिन तक कंसंट्रेशन के साथ श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण कर रहे थे और किसी को कोई भी फिक्र नहीं, कोई याद नहीं, कोई अलग से कार्य नहीं। हमारी क्या स्थिति होती है, आधे घंटे का लेक्चर होता है और उसमें भी हमें 15 दफा तो उठना पड़ता है, याद आता है कि ये कार्य वो कार्य। लेकिन शास्त्र सुनने की विधि यहाँ पर बताई कि जब शास्त्र हम सुनते हैं तो पूरा ध्यान उसके अंदर होना चाहिए, तभी उसका लाभ होता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा को प्रथम बार सुनाया तब सूत जी, श्री सूत जी गोस्वामी ने जो वहीं उपस्थित थे, नैमिषारण्य में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। अब जब महाराज परीक्षित को सुना रहे थे तो और भी बहुत सारे ऋषि वहां पर बैठे हुए थे ना, तो वहां पर सूत गोस्वामी भी बैठे हुए थे और सूत गोस्वामी को महाराज परीक्षित को सुनाते वक्त जब है ना, अब महाराज परीक्षित की तो मृत्यु हो गई और इतने सारे बैठे हुए थे, लेकिन जो सूत गोस्वामी थे ना उनको सुखदेव गोस्वामी ने बोला आप आगे आके बैठो। जब वो आगे आके बैठे, उनके मतलब पहले पीछे बैठे हुए थे फिर आगे आके बैठे, तो उनको बोला कि देखो अभी मैं सुना रहा हूँ ना, अब नेक्स्ट तुम्हारा टर्न है, उसके बाद तुम्हें सुनाना है, गौर से सुनना और ऐसा का ऐसा प्रचार करना जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर सूत गोस्वामी ने यही कथा जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, यही कथा नैमिषारण्य के स्थान पर 88,000 ऋषियों को सुनाएंगे बाद में। वास्तव में भक्त श्रीमद् भागवतम महापुराण की बहुत सारी परंपराएं हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है, कृष्ण ने ये श्रीमद् भागवतम महापुराण ब्रह्मा विष्णु और महेश को सुनाया, ठीक है, ये है भागवतम महापुराण की पहली परंपरा। उसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा से संकर्षण, संकर्षण ने यही भागवतम सनत कुमार को, सनत कुमार ने यही भागवतम सांख्ययान मुनि को, सांख्ययान मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति जी ने पराशर मुनि को, पराशर मुनि ने पुलस्त्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय ऋषि को सुनाया और मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाया। ये है श्रीमद् भागवतम की दूसरी परंपरा। और श्रीमद् भागवतम की तीसरी परंपरा, भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने यही ज्ञान अपने शिष्य वेदव्यास जी को सुनाया और वेदव्यास जी ने यही ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित और अन्य ऋषियों के साथ साथ सूत गोस्वामी को सुनाया और सूत गोस्वामी ने यही ज्ञान नैमिषारण्य के ऋषि 88,000 ऋषियों को, जिनमें सोनिक प्रदान थे, उनको सुनाया। अब प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद् भागवतम की इतनी परंपराएं हैं, तो हमें जो भागवतम मिला है, जो हम आज पढ़ रहे हैं, वो कौन सा है? कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सुनाया वो वाला भागवतम है, या जो विदुर जी वाला है वो भागवतम है, या जो भगवान विष्णु से, भगवान कृष्ण से स्टार्ट होके नारद व्यास सुखदेव परीक्षित और सूत गोस्वामी तक पहुंचा, और सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों और सोने कृषि को सुनाया वो वाला है। वास्तव में भक्तों हमारे पास ये वाला भागवतम है जो सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया था। जब हम पहले पढ़ेंगे ना, पहला स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें हमें बताया जाएगा कि ये भागवतम हम सूत गोस्वामी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। लेकिन ये परंपरा एज इट इज होती है। सूत गोस्वामी क्या कहेंगे कि मैं वही बात बता रहा हूँ जो कि शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताई थी। और शुकदेव गोस्वामी जब बता रहे होंगे तब बताएंगे कि मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे गुरु महाराज वेदव्यास जी ने बताया। वेदव्यास जी जब बताते तो क्या बोलेंगे कि मैं वही बता रहा हूँ जो नारद ने बताया और मेरे गुरु महाराज नारद मुनि ने बताया। और नारद मुनि क्या कहते हैं, मैंने अपने पिताश्री ब्रह्मा जी से सुना। और ब्रह्मा कहेंगे ये तो मैंने भगवान नारायण से सुना। तो ये लिंक जुड़ा हुआ है परंपरा से और यही परंपरा हम तक पहुंची है सूत जी और सोनिक आदि ऋषियों के द्वारा। उस समय क्या हो रहा था, क्योंकि कलयुग आ गया था। अब महाराजा परीक्षित जैसे सुखदेव गोस्वामी ने जैसे महाराजा परीक्षित को सुनाया और महाराजा परीक्षित की मृत्यु हो गई तो कलयुग आ गया था उस समय। और कलयुग के आने की वजह से सारे जितने ऋषि मुनि थे वो बहुत हताश हो गए थे। और उनके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि जनसाधारण की आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण प्रस्तुत कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित हुए। कि सारे ऋषियों ने सोचा अब तो सारे मानव समाज पर बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पहुंचेगा क्योंकि कलयुग आ गया है, तो हम क्या करते हैं दीर्घकालीन यानी हजार सालों तक बैठ के यज्ञ करेंगे। और यज्ञ से पवित्र यानी कि वाइब्रेशन अच्छा होगा ना, दुष्परिणाम खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर ये बात तो सोचने की है कि कलयुग में मनुष्य की उम्र 100 साल है और इन्होंने आयोजन किया था कितना 100,000 सालों तक यज्ञ करने के लिए। अब 1,000 साल की तो आयु ही नहीं होती। तो उसका उत्तर देते कहते हैं कि जब भगवान की शरण में वो आ गए थे नैमिषारण्य सूत्र को, ये इस जगह को ये वरदान था कि आप वहां पर बैठ के जब कोई कार्य करोगे, यज्ञ करोगे इत्यादि करोगे तो उसमें कभी कोई खंडन नहीं आएगा जब तक कि आप उसको संपन्न नहीं कर ले। तो इसलिए उन्होंने उस जगह को चॉइस किया था। और जब उन्होंने यज्ञ स्टार्ट कर लिया था जन कल्याण के लिए, तो आगे कहते हैं श्री प्रभुपाद जी, जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुना है। फिर वहां पर यज्ञ में बहुत सारे ऋषि आए थे ना, तो सूत गोस्वामी भी आए, उनसे उन्होंने कहा कि आप हमें वैदिक ज्ञान का सार समझाइए क्योंकि अब हम सुनना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी ने कहा आप लोग यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ करो ना। तो बोले नहीं, यज्ञ नहीं करना है हम लोग को। उन्होंने यज्ञ करने के लिए बैठे थे लेकिन बोला यज्ञ नहीं करना है, अभी हम श्रवण करना चाहते हैं, आप हमें सुनाओ। तो उन्होंने अपनी, तो सूत गोस्वामी ने अपनी स्मृति से, क्योंकि अभी अभी वो सुनकर आए थे ना, जो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे वो सूत गोस्वामी ने सुना था, तो अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवतम के सभी 18,000 श्लोक उन्हें सुना दिए जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। आगे श्रीमद्भागवत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर सूत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनिक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद का श्रवण होता है। अब देखो कुछ प्रश्न जो क्योंकि जब वो सुना रहे हैं, अब सूत हम क्योंकि वो वाला भागवत हम सुन रहे हैं ना जो सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को सुनाया, अब वो डायरेक्ट से प्रश्न जो कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे थे वो तो सोने सूत जी गोस्वामी ऋषियों को बता ही रहे हैं, सबको वो बता रहे थे कि परीक्षित महाराज ने ये पूछा तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने उसका ये उत्तर दिया। लेकिन उस टाइम पर क्योंकि सुन रहे थे 88,000 ऋषि और उनमें जो प्रधान थे, पहले सारे ऋषि ना एक साथ क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन क्योंकि उससे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही थी तो उन सब ने ये बोला कि अब क्वेश्चन क्या कौन करेगा, सोनिक ऋषि करेंगे। फिर बीच बीच में सोनिक ऋषि भी क्वेश्चन करते थे, मतलब प्रश्न करते थे और सूत गोस्वामी उसका उत्तर देते थे। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से दो प्रकार के संवाद श्रवण होते हैं हमको, क्योंकि हम दोनों का सुन रहे हैं, परीक्षित महाराज ने जो सुनाया सुना था, सुखदेव गोस्वामी से वो सुन रहे हैं सूत गोस्वामी के मुख से, और जो सोनिक आदि ऋषियों ने जो प्रश्न किए थे सूत गोस्वामी से वो भी हम सुन रहे हैं। तो दो सार, दो एक सार। आगे कहते हैं, एक गंगा तट पर महाराजा परीक्षित के तथा सुखदेव गोस्वामी के मध्य, और दूसरा नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी तथा वहां एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि सोनिक ऋषि के मध्य हुआ संवाद। ये दोनों हम सुन रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद भी क्या, बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते, यानी कि वो बताते हैं ना, सुखदेव गोस्वामी अब जब बता रहे हैं परीक्षित को तो वो बताते ना कि इतिहास में ये बात इसने पूछी थी, यानी कि आगे का भी बता रहे होते हैं इतिहास का भी। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का वर्णन भी प्रस्तुत करते हैं जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के मध्य में हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि पुलस्त्य ऋषि के कहने पर मैत्रेय ऋषि ने विदुर को सुनाया था, है ना। तो विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का जो भी संवाद है ना, वो भी बीच में आता है कि मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को ऐसे बोला, फिर विदुर जी ने ये प्रश्न किया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ सकेगा। यानी कि अगर आपको पता होगा कि किस तरह से ये चल रहा है सिलसिला, तो आप उसको सही तरह, उसमें जो मिलावट है कि बीच में वो बोलेंगे उसने इसको कहा है, मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कह रहे हैं, विदुर जी ये प्रश्न कर रहे हैं, परीक्षित महाराज से, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, या फिर ऐसा आएगा कि सूत जी महाराज जो है वो सोनिक आदि ऋषियों को ऐसा कह रहे हैं, तो ये जो मिलावट वाले मिश्रण वाले हैं ना, वो आसानी से समझ जाएंगे। इसमें समझने जैसी मतलब ऐसा नहीं है, घटनाओं को सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि मूल पाठक प्रतिक्रम नहीं वर्ण दार्शनिक वांग्मय या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि मेन तो यही बात है कि कौन सा ज्ञान बताया गया, क्वेश्चन आने पर अभी उस टाइम पर किस तरह बताया, ये सवाल ये कैसे हुआ, ये बात समझना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जितना ज्यादा जरूरी ये है कि प्रश्न क्या है और उसका उत्तर क्या है, किसने प्रश्न किया, उत्तर किसने दिया है और क्या उत्तर दिया है। अतः केवल श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु के प्रति सहज रहने की ही आवश्यकता है कि वास्तव में विषय क्या है, वस्तु क्या है, समझने योग्य क्या बात है, उसको ज्यादा अगर हम इम्पोर्टेंट करेंगे और उसको फोकस करेंगे, जिससे इसके गंभीर संदेश का आस्वादन पूर्णतः हो सकेगा। फिर हम उसका जो गंभीर विषय है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में बहुत ही सीरियस टॉपिक्स हैं, लेकिन वो इतने मीठे बहुत टेस्टी तरीके से बताए गए हैं, और उन क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है वो जब बताते हैं, सुख कहते हैं तोते को, अब जैसे हमने पढ़ा कि ये श्रीमद् भागवतम वैदिक वाङ्मय का पका हुआ फल है, और कहते हैं जब किसी फल पर तोता चोंच मार लेता है तो उस फल की मिठास करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उस तोते की लाल चोंच जब उस फल पे लग जाती है तो वो वैसे श्रीमद् भागवतम क्योंकि भगवान की कथाओं से भरपूर है तो बहुत सुस्वादु है, लेकिन क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से वो निकला है तो उसका टेस्ट करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं जब हम उसको गंभीरता से सुनेंगे तो उसका मीठा जायका जो है वो हम चख सकेंगे, और इस सुस्वादु फल का आस्वादन करने के बाद हम अपने जीवन की असंतुष्टि, अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम, सारी डिप्रेशन, सबसे मनुष्य आजाद हो जाएगा, क्योंकि वो इतना टेस्ट जब उसको लाइफ में मिलेगा भगवान के कथाओं का, तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा जिसकी वजह से मनुष्य दुखी हो। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि महाराजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन के पश्चात निश्चित थी, लेकिन श्रीमद् भागवतम का रस आस्वादन करने के बाद वो भूल गए कि मेरी मृत्यु होने वाली है। वो भगवान की लीलाओं में इतना खो गए, इतना प्रेम भगवान के प्रति आघार प्रेम उनके हृदय में उत्पन्न हो गया कि उन्हें अपनी मृत्यु तक याद नहीं आई। तो जो संसार में हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी जो दुख है, छोटी छोटी टेंशन है, वो हम भूल जाएंगे, उसमें क्या शक है। लेकिन जरूरत क्या है, यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, आवश्यकता किस बात की है कि हम गंभीरता से सीरियस होकर और कंसंट्रेशन के साथ इस शास्त्र को सुने। आगे बताते हैं कि इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम की तुलना मिस्री से की है। जैसे मिस्री को जब आप खाते हो, किस कहीं से भी खाओगे, यहाँ पर लिखा है चाहे जहां से भी इसका आस्वादन करेंगे सर्वत्र समान मिठास और स्वाद ही लगेगा। अतएव श्रीमद् भागवतम की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे और तब श्रीमद् भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रम से पढ़े। यानी कि वैसे तो भागवतम महापुराण मीठा है, इतना कि मिश्री के जैसा है, जहां से भी आप उसको खाओगे तो मीठा लगेगा। लेकिन सलाह देते हुए कहते हैं कि देखो, आपको शुरू से स्टार्ट करना चाहिए, प्रथम स्कंद से लेकर अंतिम तक जाना चाहिए। भागवतम का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य साहित्य पहला वर्ण अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी भाष्य जाना जानता है। यानी कि पहले अंग्रेजी में हुआ था व्यापक और पर उपलब्ध पहला संस्करण है। यानी कि पहले अंग्रेजी में बताया गया, पहले स्कंद से दसवें स्कंद के पहले भाग तक के पहले 12 खंड विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय धर्म तथा दर्शन के उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के पांडित्यपूर्ण एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। मतलब कैंटो 1 से लेकर कैंटो 10 तक, यानी दसवें स्कंद के पहले भाग, अब दसवें स्कंद के 2-3 भाग है ना, उसमें पहला जो भाग है उसके पहले 12 खंड वो जो है वो किन के जरिए, श्री प्रभुपाद ने खुद अपने खुद ज्ञान और भक्ति से भरपूर कोशिशों का नतीजा है। मतलब दसवें स्कंद के पहले वाले भागों तक तो श्री प्रभुपाद जी ने अपने जीवन कार्य में ही ये सब कर लिया, क्योंकि उनका श्री प्रभुपाद जी का वैदिक ज्ञान तो और है ना, इतना उनकी बहुत वाकुफियत थी, बहुत ज्यादा उनको जानकारी थी उसके विषय में। लेकिन 1977 में इस संसार में श्री प्रभुपाद जी के तरोभाव के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का विशाल कार्य उनके शिष्यों हृदयानंददास गोस्वामी और गोपी प्राणधन दास द्वारा जारी रखा गया। यानी कि फिर जो बाकी के 2 स्कंद रह गए थे और 10वें स्कंद का कुछ हिस्सा रह गया था, वो उनके शिष्य हृदयानंद और गोपी प्राणधन दास के द्वारा जारी रखा गया। पाठकों को यह कृत अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगा। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी उसकी वजूहत है। कैसे, आगे बताते हैं कि जो लोग भारतीय संस्कृति के मूल में रुचि रखते हैं, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि भारत की तहजीब क्या है, संस्कृति क्या है, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत सूचना का विशाल स्रोत है। बहुत ही डिटेल से उसके विषय में, भारत की संस्कृति के विषय में बताया गया है इसमें। आगे कहा गया है तुलनात्मक दर्शन, यानी जो तुलनात्मक करते हैं दूसरे मजहबों के साथ, देखते हैं हमारे ग्रंथों को जब कंपेयर करके देखते हैं, तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए, जो धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, धर्म के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भागवत भारतीय महान संस्कृत धरोहर है। बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा खजाना है और धरोहर के अर्थ को समझने में पैनी दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि आपको इतना ज्ञान प्रदान करता है कि आपको पता चल जाता है कि कितनी महानता है हमारे धर्म में। समाज विज्ञानियों तथा नृतत्व शास्त्र का मतलब होता है जो मनुष्यों के कल्याण के लिए शास्त्र लिखे गए, जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए शास्त्र पढ़ते हैं। अब समाज हो, वैज्ञानिक हो, नृतत्व शास्त्र हो, उनके लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की परवाह व्यावहारिक कार्य पद को प्रकट करने वाला, यानी कि जीवन के हर एक क्षेत्र में श्रीमद् भागवतम आपकी हेल्प करता है। अब आजकल क्या है, हमारा धर्म जो है वो पीछे जा रहा है, बहुत आगे नहीं तरक्की कर रहा है, लोग अपने धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि शास्त्र अध्ययन नहीं करते, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भागवतम का अच्छी तरह से पाठ करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, तो अपने धर्म के मूल सिद्धांत, अपने धर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो जीव को पता है। इसलिए कहते हैं कि छोटी उम्र से, कल हमने पढ़ा था ना, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, ये भगवत धर्म इतना इम्पोर्टेंट है कि छोटी उम्र से ही बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारे धर्म की क्या महत्ता है। तो बने जो भी इसको पढ़ते हैं, आगे लिखा है, साहित्य के अध्येताओं को भागवत महापुराण उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ प्रकृति प्रतीत होगी। काव्य का मतलब होता है, ऐसे लगेगा कि कितना अच्छा है शायरी इसमें, कितना अच्छा है जो साहित्य को पढ़ते हैं, अदब जो पढ़ना चाहते हैं उसके, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी शायरी की किताब लगेगी। जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं उनको ज्ञान मिलेगा, जो मनुष्य जाति के कर्मों के विषय में जानना चाहते हैं, जो इतिहास जानना चाहते हैं उनको पूरा इतिहास मिलेगा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दर्शन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेगी। जो मनोविज्ञान यानी जो नफ्सियात के स्टूडेंट्स होते हैं उनके, उनको ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप यानी मनुष्य के जो आचरण है, रवैया है, उसके विषय में और आत्मस्वरूप के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेगी, उसको बताएगी कि ये आत्मस्वरूप है आपका। अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए भागवतम एक सरल व्यावहारिक पथ दर्शन का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जो अपने रियल स्वभाव और स्वरूप को जानना चाहते हैं, उनके लिए भागवतम एक सरल व्यावहारिक प्रदर्शन का काम करेगा। वो आसानी से आपको उस रास्ते की ओर ले जाएगा जो आपसे आप के स्वरूप का परिचय कराएगा, जो आपको ये बताएगा कि आपका प्रेम, स्वाभाविक प्रेम किसके साथ है, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। यानी कि आत्मज्ञान यानी कि आपके बारे में और परम सत्य से आपका रिलेशन, उसके विषय में आपको सरलता से आत्म साक्षात्कार कराएगा। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में समाप्य यह महत्वपूर्ण ग्रंथ दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के भौतिक, संस्कृत तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। ये श्री प्रभुपाद जी की अपार कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना हम मानव जो कि अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं उनके लिए इतना कार्य किया कि श्रीमद् भागवतम महापुराण को तात्पर्य के साथ लिखा है, कि एक श्लोक के विषय में इतना गहराई से बताया है, जिसकी कृपा से हम इस योग्य बन सके कि हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के विषय में पढ़ सकें, उन उसके श्लोकों को समझने का प्रयास तो एटलीस्ट कर सकें। लेकिन अगर श्री प्रभुपाद जी ने इतना अहम कार्य न किया होता तो आज मानव समाज इस अजीम ग्रंथ, जो ये इतना बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसको समझने से बिल्कुल समझ ही नहीं सकता था, क्योंकि इतना, तो ये उनकी कृपा है। क्योंकि जब अब श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ के, उनके श्लोकों के अर्थ के साथ जब आस्वादन किया जाता है तो हम करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्र कहता है यस्य भागवतम शास्त्रम वाच्यथ अर्थनोदिशम, कि अर्थ जो श्लोकों के शब्द हैं उनके अर्थ के साथ यदि कोई उसको श्रवण करता है, यदि कोई उसको पढ़ता है, अगर कोई श्रीमद् भागवतम को अर्थ के साथ श्रवण करता है या पढ़ता है, तो कहते हैं करोड़ों करोड़ जन्मों के, हमारे करोड़ों जन्म कोटि कृतम पापम, यानी कि जिनकी संख्या हम गिन भी नहीं सकते, जिधर तक हमारी गिनती जाती है वो समस्त अपराध नश्यत नात्र संशय, वो नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अपराधों से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भारी बात कोई है तो वो है कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का मुख्य लाभ है कि श्रवण से प्रीति उत्पन्न होती है। जिस भगवान से प्रीति उत्पन्न ना होने की वजह से हम करोड़ों करोड़ जन्मों से पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं, बारंबार इस संसार में आना पड़ रहा है, दुखों को भोगना पड़ रहा है। इसकी वजह केवल यही है कि हम भगवान के साथ प्रीति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया गया। प्रेम से भगवान का धाम हासिल हो सकता है। हम सबका सौभाग्य है कि आज से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लिया। तो क्या कान के जरिए से, अब जैसे अगर हम किधर जाना होता है हमें, तो पहले टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ता है ना, और उसके लिए घर पे बैठकर तो हमें टिकट नहीं मिलता है, उसके लिए एजेंट के पास जाना पड़ता है, टिकट विंडो के पास जाना पड़ता है। और उसी तरह यदि गोलोक वृंदावन धाम में अपना टिकट रिजर्वेशन करवाना होता है तो उसका रास्ता कान के जरिए श्रवण करके हृदय में टिकट जो है ना वो भगवान के धाम में जाने की रिजर्व करवाई जाती है। तो ये सब श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन करना शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।